नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चाद्देशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायन् मामनुभीप्सुमन्दं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचो यपि जत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ॐ नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के महाप्रभु के साथ द्वितीय मिलन की कथा सुनेंगे। यद्यपि प्रसंग थोड़ा बड़ा है, कम से कम 2 घंटा समय तो चाहिए है, तो आप देख लीजिए अपना घड़ी, इसी हिसाब से 2 घंटा बाद कथा पूर्ण होगी। तो मध्य लीला के 19वें परिच्छेद में रूप गोस्वामी के द्वितीय मिलन और साथ ही श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रयाग में 10 दिन शिक्षा की कथा है। तो शिक्षा की चर्चा तो नहीं की जाएगी, क्योंकि 10 दिन की शिक्षा को 1 घंटा में नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए अलग से 1 सप्ताह करना पड़ेगा कम से कम। अभी कोशिश करके पुणे में रूप शिक्षा पर बोला था, 4-5 दिन दोनों सत्र, तो अभी केवल रूप गोस्वामी के द्वितीय मिलन की कथा। वृंदावनीयां रस के लिवार्ताम काले न लुप्ताम निज शक्ति मुक्तः मुत्कः संचार्य रूपे वेतनोत् पुनः स प्रभुर्विधौ प्रागिव लोक सृष्टिम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को भगवान ज्ञान दिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती जत सूर्य, जिस ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर्य विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, उस ज्ञान को श्री भगवान ने ब्रह्मा को दिया सृष्टि के प्रारंभ में। मतलब भूत में किस प्रकार सृष्टि की गई, वर्तमान में सृष्टि का क्या स्वरूप होगा और आगे सृष्टि क्रम कैसे चलेगा, इसके साथ ही अपने विषय में भी भगवान ज्ञान दिए। अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन से किस प्रकार विस्तार हुआ और प्राकृत जगत में, वैकुंठ लोक में, और प्राकृत जगत की सृष्टि के लिए भगवान कैसे पुरुषावतार धारण किए इत्यादि सब कुछ ब्रह्मा को बतलाया गया। उसी प्रकार वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत्कह, जो काल के प्रभाव से वृंदावन की लीला, वृंदावन की माधुरी लुप्त हो चुका था, उसको श्री महाप्रभु संचार रूपे वितनोत पुनः सह, श्री रूप गोस्वामी के अंदर उसको संचारित किए उन सब लीलाओं को। प्रभुर विधौ प्रागिव लोक सृष्टि, जैसे वही ब्रजनंदन श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में विधाता को ज्ञान दिया था ब्रह्मा को, वैसे ही रूप गोस्वामी को भी दिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के साथ समस्त गौर भक्तों की जय हो। इसके साथ अब कथा प्रारंभ करते हैं। जहाँ कल छोड़े थे वहाँ से वो प्रसंग है मध्य लीला के प्रथम परिच्छेद में, और यह है मध्य लीला के 19वां परिच्छेद। लेकिन लिंक देखिए, श्री रूप सनातन रहे राम के लिए ग्रामे प्रभु रे मिलिया गेला अपन भवने। राम के लिए में महाप्रभु से मिलने के बाद रूप सनातन अपने घर गए। ठीक, राम के लिए तक की मिलन कथा तो सुन चुके हैं। दुई भाई विषय त्यागे रूपाय सृजिल बहु धन दिया दुई ब्राह्मण बरिल। दोनों भाई अब निरंतर इस चिंता में हो गए कि कैसे इस राजकाज से छुटकारा प्राप्त किया जाए, कैसे रिजाइन देकर महाप्रभु के साथ रहें। तो इसके लिए दो ब्राह्मण नियुक्त किए, वरण किए, पढ़े लिखे ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्र को जानते थे और वैष्णव थे, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए और कृष्ण मंत्र कराई ल दुई पुष्यरण अचिराते पाई बारे श्री चैतन्य चरण। कृष्ण नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का दो पुरस्चरण कराए, पाठ कराए। लक्ष्य क्या था कि बहुत जल्दी चैतन्य महाप्रभु का चरण मिल जाए। अच्छी रातें पाई बारे चैतन्य चरण, बहुत जल्दी चैतन्य चरण प्राप्त करने के लिए। आसन पीछे लगाना चाहिए था, अंततः तो भीड़ हो जाती। श्री रूप गोसाई तबे नौका ते भरिया अपना रे घरे आईला बहु धन लिया। तो पुरस्चरण पूरा हुआ, रूप गोस्वामी की रिजाइन स्वीकार कर ली गई, लेकिन सनातन का नहीं, सनातन तो सेकंड मालिक थे। तो रूप गोस्वामी को रिटायर होने पर बहुत धन मिला, दो नौका भर कर सोने का मुहर, और उसको ले करके अपने घर की ओर चले। गंगा के तट पर है रामकेली, वहाँ नवाब हुसैन शाह की राजधानी, तो नौका के रास्ते से, गंगा के रास्ते से जा रहे थे। तो जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो नौका से सोने की मुहर, जैसे ईंट ट्रक से उतारा जाता है वैसे मुहर उतार कर रख दिया गया, दो नौका। इसके बाद बांटना चालू किए, तो किसको किसको दिए, ब्राह्मण और वैष्णव दिला तार अर्ध धने, आधा धन तो एक नौका तो ब्राह्मण वैष्णव को दे दिए, कुछ अपने कुटुंब भरण के लिए श्री वल्लभ को, अनुपम को, और कुछ उसमें से मोदी के यहाँ बैंक बैलेंस कर दिए सनातन के लिए। हो सकता है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि अंत लीला के 11वें परिच्छेद में, अंतिम परिच्छेद में, कि महाप्रभु गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं पुरी से, तो उनके साथ बहुत से भक्त हैं। तो एक बूढ़ा मैंने अधेड़ लगभग 70 वर्ष का बहुत भारी वजन लेकर जा रहा था, सिर पर दबा हुआ चल नहीं जा रहा था। तो महाप्रभु हंसकर कहते हैं, बूढ़े से पूछिए क्या ले जा रहा है। सर्वज्ञ महाप्रभु सब समझ रहे थे, कहे पूछो पूछो। तो भक्त लोग पूछे, बाबा ये क्या है? तो कहे सोने का मुहर है, इतना भारी वजन 1 क्विंटल लेकर जा रहा था। तो इतना कहाँ से सोने का मुहर मिल गया? सब लोग घेर लिए, महाप्रभु भी थे। तो कहे कि वो नवाब हुसैन शाह का जो मंत्री था ना, दबीर खास, वो रिटायर हुआ है और गंगा तट पर मुहर लेकर आया था, बांटते बांटते थक गया तो वहीं छोड़कर भाग गया है। तो जिसको लेना लेने की इच्छा है वो ले रहा है, तो हम भी लिए। तो महाप्रभु सिर पकड़ कर, देखो एक छोड़कर भाग गया, एक ढोकर मरा। वस्तु एक है, मानसिकता का अंतर देखो। अब चैतन्य भागवत में पढ़ सकते हैं अंत लीला के 11वें परिच्छेद में। आज मेरी इच्छा थी कि चैतन्य भागवत मंगा कर पढ़े, लेकिन याद ही नहीं पड़ा, भूल गया। तो आपको एकदम सीधा प्यार दिखाते हैं, चलिए याद पढ़ने पर कल देख लेंगे। तो महाप्रभु हंस रहे हैं, देखिए वस्तु एक है, मानसिकता का कितना अंतर है। एक को अच्छा नहीं लगा, फेंक कर चला गया, एक ढोकर मरा है, वो भी बूढ़ा। तो महाप्रभु जान बुझ कर भक्तों को दिखाए, वो तो सर्वज्ञ समझ गए कि वो क्या है, कहाँ से ला रहा है, फिर भी पूछे भक्तों को दिखाए, देखो मानसिकता में अंतर। तो दो नौका सोने के मुहर बहुत ज्यादा कीमत, आज का कोई भी रिटायर अफसर इतना नहीं प्राप्त कर सकता है, बहुत ज्यादा। और तो गौड़े राखी मुद्रा 10,000 सनातन व्यय करे राखे मुदी घरे। तो 10,000 मुद्रा एक बनिए के पास, मोदी के पास रख दिए, सनातन कभी जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर लेंगे। और इसके बाद रूप गोस्वामी महाप्रभु के विषय में सुने कि वो वृंदावन के लिए चले, क्योंकि ये सूचना प्राप्त करने के लिए 2 ब्राह्मण लगाए थे, 2 ब्राह्मण पुरी में भेजे थे। तो वो दोनों ब्राह्मण जब महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए, तो दोनों आकर सूचना दिए। श्री रूप सुनील प्रभु नीलाद्री गमन, वन पथे जाबेन प्रभु श्री वृंदावन। रूप गोसाई नीला चले पठाइल दुई जन, प्रभु जबे वृंदावन करे न गमन। शीघ्र आसी मोरे तार दिवा समाचार, सुनिया तदन रूप करीब व्यवहार। 2 ब्राह्मण लगाए थे सूचना देना। तो सूचना मिलने के बाद रूप गोस्वामी जा रहे हैं, इनको तो मिल गया छुट्टी राजा से, रिटायर हो गए। लेकिन सनातन गोस्वामी अब मने मन क्या सोच रहे हैं, यथा सनातन गोसाई भावे मने मन, राजा मोर प्रीति करे ए मोर बंधन। राजा मुझसे प्रेम करता है, ये बहुत बड़ा बंधन है, बहुत। कोन मते राजा यदि मोरे क्रोध है, तबे अव्याहति है करी नो निश्चय। अब कोई ऐसा उपाय तो करना पड़ेगा जिससे राजा नाराज हो जाए। वो तो हमेशा खुश रहता है, इन पर इतना विश्वास करता है कि पूछिए मत, आगे वर्णन होगा। अस्वास्थ्य छद्म करी रहे निज घरे, राजकार छाड़िया ना जाए राज द्वारे। अब दरबार में जाना ही बंद कर दिए, बीमारी की बहाना करके, तबीयत ठीक नहीं है। लोभी कायस्थ गण राज कार्य करे, अपने स्वगृहे करे शास्त्रे र विचारे। लोभी ब्राह्मण राज लोभी कायस्थ, कायस्थ एक जाति है, पता नहीं इधर क्या कहते हैं, उधर बिहारी उत्तर प्रदेश में कायस्थ, श्रीवास्तव, लाला इत्यादि, वे बहुत तेज तरह जाती हैं। राय रमानंद भी कायस्थ परिवार के थे, नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ परिवार के थे, रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार के थे। बहुत तेज तराक ये लोग होते हैं। 15-20 साल पहले एक बार भारत के आईएएस अफसरों की परसेंटेज, जाति परसेंटेज निकाली गई तो 68% केवल कायस्थ थे, बाकी में 32% में सभी जाति। आज भी तो लगा दिए कायस्थ को, कुछ लोग राज कार्य देख रहे थे, अपने घर में रहकर भागवत पर विचार कर रहे थे। भट्टाचार्य पंडित 20-30 लैया, 20-30 भट्टाचार्य बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को लेकर भागवत विचार करें सभाते बसिया, भागवत पर विचार कर रहे हैं। यदि श्रील प्रभुपाद इन सारे प्यारों पर विशेष रूप से लिखे हैं, उसकी चर्चा करने का समय नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक परा विद्या की शिक्षा और एक अपरा विद्या। इसमें परा विद्या का अर्थ है जिसका संबंध भगवान से है, आध्यात्मिक जगत से है, और अपरा विद्या का मतलब जो प्राकृत शिक्षाएं हैं। तो परा विद्या को प्राप्त करके व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है वो परा विद्या से भरा हुआ है। इसमें भौतिक जीवन शैली नहीं है। वेदांत सूत्र वैदिक साहित्य का सिद्धांत है और उसका भाष्य है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम की चर्चा ये परा विद्या है। और इसमें भगवत प्रेम प्राप्त करने वाले, मुक्ति चाहने वाले लोग पढ़ते हैं, जाते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम अद्भुत ग्रंथ है जिसमें भगवान से संबंध के विषय में चर्चा है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय बताया गया है। तो जब इस पर विचार कर रहे थे सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े उद्भट भट्टाचार्य विद्वानों के साथ 20-30 ब्राह्मणों को बुलाकर विचार चल रहा था, तो एक दिन गौड़ेश्वर नवाब हुसैन शाह एक व्यक्ति को भेजा था, पहले वैद्य को भेजा, जाकर देखो सनातन का तबीयत कैसा है, वो आ नहीं रहा है कई दिनों से। तो वैद्य जाकर रिपोर्ट किया कि उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है। तो एक दिन बिना सूचना के गौड़ेश्वर नवाब हुसैन शाह आ गया। आर दिन गौड़ेश्वर संग एक जन, एक सेवक लेकर आया। आचम बीते गोसाई सभा ते कोयला आगमन, जहां ये ब्राह्मणों के साथ भागवत पर विचार कर रहे थे वहीं पहुंच गया अचानक। तो दूर से देखे राजा आ रहे हैं, तो देख कर संभ्रम में सब लोग खड़ा हो गए एकदम जल्दी। पातशाह देखिया सभे संभ्रम में उठिला, संभ्रम में आसन दिया राजा रे बसाइला। तो आ गए तो उनको आसन दिए बैठी है, भले मलेच्छ राजा है लेकिन राजा है। राजा कहे तुम्हारा स्थान ने वैद्य पठाई लू, वैद्य कहे व्याधि नहीं सुस्त जे देखी लू, आपके पास मैं वैद्य भेजा था और वैद्य रिपोर्ट किया कि आपको कोई व्याधि नहीं है, स्वस्थ है, ऐसा क्यों? हमारे जे किछु कार्य सब तुमा लैया, मेरे पास जितने कार्य हैं वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड है, और कार्य छोड़ छाड़ी रहिला तुम्ही घरे ते बसिया, हमारा सारा काम छोड़कर घर पर बैठे हो। मोर जत कार्य काम सब कैला नाश, की तुम्हार हृदय आछे कह मोर पास, मेरे सारे काम को छोड़कर घर में बैठकर भागवत पढ़ रहे हो, सारा काम धंधा नाश कर दिया, क्या तुम्हारे हृदय में है, कुछ है वो बताओ। क्या सोचकर ऐसा कर रहे हो, तबीयत तो खराब नहीं है, स्पष्ट है। सनातन कहे नहीं अमा होते काम, हमसे अब काम नहीं होगा। और एक जन दिया करो समाधान, अगर आप कहें तो और आदमी बढ़ा देते हैं, मतलब सिलेक्टेड आईएएस अफसर नियुक्त कर देते हैं, आपके काम देखते रहेंगे। तो इतना सुनकर तो नवाब क्रोधित हो गया, चाहते थे कि क्रोधित हो जाए, इसी के लिए तो उपाय कर रहे थे। तबे क्रोध हैया राजा कहे यार बार, क्रोध क्रोधित हो गया, तुम्हार बड़ भाई करे दस्युर व्यवहार। ये प्यार समझ में ही नहीं आता था किसके लिए बड़ा भाई कह रहा है नवाब, लेकिन प्रभुपाद पीछे के तीन चार प्यार के बाद इसको स्पष्ट किया है। तुम्हार बड़ भाई करे दस्यु, तब क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई दस्यु बन गया है, और दस्यु होकर क्या कर रहा है, जीव बहुमारी कैला चक्का सब नाश, एथा तुम्हें कैला मोर सर्व कार्य नाश। सारा काम तो तुम पर ही आश्रित है, और तुम्हारा बड़ा भाई अपनी मनमाना दस्यु डाकू जैसा व्यवहार करता है, सारे बंगाल को नष्ट कर दिया, और तुम योजना बना करके घर पर बैठे हो। तो सनातन कहे तुम इस स्वतंत्र गौरेश्वर, इस जे जे दोष करे देहतार फल, जो जैसा जिसका दोष हो उसको आप दंड दे सकते हैं। तो अब जो भी भाव हो बड़े भाई का, प्रभुपाद तो लिखते हैं आगे कि बड़े भाई का अर्थ गौरेश्वर स्वयं है। ये तो सुनी गौरेश्वर उठी घरे गेला, पलाई पलाई वो बलि सनातने बांधिला, कह के इसको बांध दो, इसको बांध कर रखो। एक बार तो पूछा कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, उड़ीसा पर आक्रमण करना है प्रताप रुद्र के पास, उनसे युद्ध करना है, चल सकते हो, पूछा तो ये नकार दिए। हे न काले गेल राजा उड़िया मारी थे, सनातन कहे तुम्हें चल मोर साथे। तो तेहो कहे जाबे तुम्हें देवतार दुख दीते, मोर शक्ति नाही तुम्हारा संगे जाई थे। महाराज प्रताप रुद्र साक्षात देवता हैं, जगन्नाथ के भक्त हैं, उनको दुख देने के लिए आप जा रहे हैं, तो मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है आपके साथ जाने का। तबे तारे बांधी राखी करी लागमन, तब कहा कि इसको अरेस्ट कर लो, आने के बाद इसका क्लास लगाऊंगा। एथा नीला चले है थे प्रभु चलीला वृंदावन, ठीक उसी समय महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन की ओर चले। तो यहाँ प्रभुपाद इसके पहले प्यार में लिखते हैं कि बंगाल के नवाब तथा सनातन गोस्वामी बड़ी घनिष्ठता थी, नवाब उन्हें अपना छोटा भाई मानता था, अतः जब सनातन ने त्याग पत्र देने की इच्छा व्यक्त की तो नवाब ने पारिवारिक स्नेह के कारण कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, किंतु राज की व्यवस्था तो मैं नहीं देख पाता, देखते तो तुम हो, मेरा तो एकमात्र कार्य है अपने सैनिकों के साथ अन्य राजाओं पर आक्रमण करना तथा डाकू के समान सर्वत्र युद्ध लड़ाई करना, लूटना पलटना, राज विस्तार करना। तो डाकू का काम करने में मैं लगा हूँ और तुम राज संभालने वाले हो। कहने का मतलब कि मैं मांसाहारी हूँ, जीवों का शिकार करता हूँ, बंगाल के जो छिटपुट जमींदार हैं उनका विनाश करता हूँ, तो ये तो डाकू का काम है, ये मैं करता हूँ। राज चलाना तो तुम्हारा काम है, तुम बैठकर घर बैठे हो, सब चौपट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे विध्वंस कार्य में लगा हुआ है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह राज की व्यवस्था देखते हो, यदि तुम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं यह वार्ता पारिवारिक संबंध पर आधारित थी, और सनातन गोस्वामी ने भी हंसी में उत्तर दिया कि ठीक है, तो आप स्वतंत्र शासक हैं, आप जैसा उचित समझें, मेरे भाई आप बंगाल के स्वतंत्र शासक हैं, आप जैसा भी चाहें वैसा करें, जिसकी गलती हो उसको दंड दें। तो ये मजाक में बातें हो रही थी, अथवा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हारा बड़ा भाई माने रूप गोस्वामी तो अचानक रिजाइन देकर चला गया, सारा काम जहां तहां विनाश हो रहा है और तुम भी वही काम कर रहे हो। जो भी हो, जैसा भी हो, प्रभुपाद तो नवाब को ही बड़ा भाई के रूप में लिख रहे हैं। तो अब अरेस्ट करके चला, तबे से ही दुई चर रूप ठाई आईला। महाप्रभु जो वृंदावन के लिए गए तो वृंदावन चलीला, प्रभु आसिया कहिला। तो सुनिया सी रूप लिखिला सनातन ठाई, यह सुनकर रूप गोस्वामी पत्र लिखे सनातन गोस्वामी के पास। वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसाई, श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और आमी दुई भाई चलियाम तहार मिलिते, तुम्हें जैसे तैसे छुट्टी आई सतहा ही थे। तो हम दोनों भाई ने रूप और अनुपम महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप जैसे तैसे जेल से निकल कर आ जाना। कैसे निकल कर आना तो उपाय बता रहे हैं कि 10 सहस्त्र मुद्रा अच्छे तथा अच्छे मुद्दे स्थाने ताहा दिया कर शीघ्र आत्मविमोचन। नहीं, आप 10,000 रुपया मोदी के पास है, उसको देकर जेलर को किसी तरह मुक्त हो जाना। अब इतना सब विवरण नहीं लिखना था, संकेत कर दिए, वो तो बुद्धि में बृहस्पति थे सनातन गोस्वामी। और सारे जेलर फेलर जितने जज वज थे सबको यही नियुक्त किए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के और सुप्रीम जज थे। तो जितने बड़े बड़े पोस्ट थे सबका नियुक्ति सनातन गोस्वामी ही किए थे। तो कहते आप जैसे तैसे उसको मना लीजिएगा, हम लोग वृंदावन चल रहे हैं, वहीं मिलेंगे। अनुपम छोटा भाई, अनुपम मलिक तार नाम श्री वल्लभ, श्री वल्लभ घर का नाम था, अनुपम मलिक नवाब हुसैन शाह के द्वारा दिया गया नाम था। रूप गोसाई छोटे भाई परम वैष्णव, ये राम भक्त थे। तहा लैया रूप गोसाई प्रयागे आईला, महाप्रभु तहा सुनी आनंदित हिला। जब जा रहे थे वृंदावन की तरफ तो महाप्रभु उधर से 2 महीना ब्रज में घूम कर लौट रहे थे। ये जब प्रयाग पहुंचे तो महाप्रभु वृंदावन से लौट कर प्रयाग आ गए। तो ये लोग त्रिवेणी स्नान करके बिंदु माधव की ओर जा रहे थे, देखे लाखों लाख लोग, भीड़ है, मेला है, बिना कुंभ लगे मेला लगा हुआ है। प्रभु चलिया छेन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोग आई से प्रभु र मिलने। तो और लोग लोगों की स्थिति क्या है कि केह कांदे केह हासे केह नाचे गाय, कृष्ण कृष्ण बोली केह गड़ा गड़ी जाए। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर पछाड़ खा जाता है, गिर जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रयाग 2 महान नदियों के बीच में है, गंगा और यमुना, लेकिन कभी नहीं सुना गया इतिहास में कि गंगा यमुना विशाल जल राशि लेकर चलती हैं और इतना बाढ़ आ जाए कि प्रयाग डूब जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। गंगा यमुना प्रयाग नारी लड्डू बाई थे, भारी बरसात होने के बाद भी प्रयाग के डूबने का सूचना नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु डुबाई लग कृष्ण प्रेमेरे प्रेमेरे बन्या थे। लेकिन महाप्रभु प्रेम बन्या कहते हैं बाढ़ को बंगला में, प्रेम कृष्ण भक्ति के बाढ़ से, कृष्ण प्रेम के बाढ़ में पूरा प्रयाग को डुबा दिए महाप्रभु। बाढ़ गंगा जमुना के पानी से प्रयाग कभी नहीं डूबा, लेकिन महाप्रभु के प्रेम भक्ति में डूब चुका था। भीड़ देखी दुई भाई रहिला निर्जने, प्रभु र आवेश हिला माधव दर्शने, दूर से देख रहे हैं। तो प्रेमावेश नाचे प्रभु हरि ध्वनि करी, उर्द बाहु करी बले बोलो हरि हरि। महाप्रभु सारे भीड़ को संबोधित करते थे, बोलो हरि हरि। प्रभु र महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे प्रभु र लीला नाही वर्णिवार। ते महाप्रभु की महिमा बहुत चमत्कार था, किसी को भी इसका वर्णन करने की क्षमता नहीं है। तब तक एक दक्षिणात्य ब्राह्मण प्रयाग में भी और यहाँ मराठी ब्राह्मण एक काशी में भी रहते थे वैष्णव, तो ये आकर महाप्रभु से अपना परिचय किए। दक्षिणात विप्र सन अच्छे परिचय से ही विप्र निमंत्री या नील निजालय, तो उस ब्राह्मण से कभी कभी तीर्थ यात्रा में घूमता रहता था ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण था, तो रूप गोस्वामी से परिचय था। तो और वो महाप्रभु से परिचित था बहुत पहले से, देखा कि महाप्रभु प्रयाग में है तो इनको अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित करना चाहिए, तो निमंत्रित किया। महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लिए। तब रूप गोस्वामी विचार किए कि भीड़ भाड़ से अच्छा है उसी ब्राह्मण के घर जाकर मिलेंगे। तो विप्र गृहे आसी प्रभु निभृत वसिया, एकांत में बैठे तो श्री रूप वल्लभ दुहे आसिया मिलीला, वहां आकर मिले। और उसी दैन्य भाव में दुई गुच्छ तीर्ण दुहे दसन धरिया, प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत हैया, अपने दांत में दूब लेकर दैन्य के आवेश में दंडवत प्रणाम किए और अनेक प्रकार के दैन्य भाव के श्लोकों को पढ़ पढ़कर महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु को देखकर प्रेमावेश में हो गए, संस्कृत के अनेक श्लोकों को बार बार पढ़ते थे। महाप्रभु देख लिए, श्री रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हिल मन, उठो उठो रूप आई सब बलीला वचन, उठो उठो पहचान गए। कृष्ण र करुणा किछु ना जाए वर्णने, विषय कुप हिते काढ़ी ल तुम्हार दुई जने, कृष्ण की कृपा बड़ा बलिष्ठ है, देखो अंततः आपको विषय कुप से निकाल ही दिए कृष्ण। वाह, तो लेकिन दैन्य में है रूप गोस्वामी, मुस्लिम क्या नौकरी करके आए हैं, अभी वही दरवेश वही वेशभूषा सब कुछ, और आवेश भी वही है कि पता नहीं हम कितना नीच हैं। तो कहना नहीं पड़ा, श्लोक में उनकी महिमा गा रहे थे तब तक महाप्रभु कहते हैं ऐसा मत सोचो, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सुपचम प्रिय, तस्मै देयम् ततो ग्राह्य सच पूज्यो यथायहम्। महाप्रभु कहते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का विद्वान हो ब्राह्मण, जो चारों वेदों को जानने वाला हो, यदि वह भक्ति शून्य है और तो वह मुझे प्रिय नहीं है, यदि भक्ति से शून्य है तो वह मुझको प्रिय नहीं है, यदि एक चंडाल मुझ में भक्ति करता है तो वह मेरा प्रिय है। अतः ऐसे भक्त चंडाल को सत्पात्र समझकर देना चाहिए, और वो कुछ देता है तो उसे लेना चाहिए, वह मेरे समान पूज्य है। तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम्, उसी को देना चाहिए और उसी से लेना चाहिए, अगर दे रहा है तो उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सच पूज्य, वह व्यक्ति पूज्य है, यथा ही अहम, ही माने निश्चित रूप से मेरे समान पूज्य है, ही निश्चित के अर्थ में प्रयोग होता है, भी नहीं ही, केवल केवल, तो वह मेरे समान ही निश्चित रूप से प्रिय है। नमे भक्त, नमे अभक्त चतुर्वेदी, मेरा अभक्त है अगर वो चतुर्वेदी भी है तो प्रिय नहीं है। मद भक्त स्वपचम प्रिय, स्व स्व तलाबी, स्व स्व माने कुत्ता, अपच माने हजम करने वाला, कुत्ता को खाकर जो हजम कर जाए पचा ले उसको स्वपच कहते हैं। तो स्वपच परिवार में जन्म लेने वाला यदि मेरा भक्त है तो मुझे प्रिय है, और वही पूज्य है, वही देने के योग्य है, उसी को देना चाहिए, और वह कुछ दे रहा है तो कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, वह मेरे समान पूज्य है। आप इस तरह से चिंता मत करो, यही श्लोक पढ़ी दुहारे कैला आलिंगन, महाप्रभु दोनों का आलिंगन किए, कृपा ते दुहारे माथा धरिला चरण, लेकिन आलिंगन से वो लोग माने नहीं, गिर पड़े महाप्रभु के चरणों में और महाप्रभु अपना सीधा पैर उठाकर उनके सिर पर रख दिए। प्रभु कृपा पाइया दुहे दुई हाथ जुड़ी, दीन हैया स्तुति करे विनय आचरी। दीन भाव से स्तुति करने लगे और वह सुप्रसिद्ध श्लोक रूप गोस्वामी बोलते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कहा ना पहले ही आसन लगाना चाहिए। नमो महावदान्याय, नमस्कार है महान दानी को। रूप गोस्वामी कह रहे हैं महान दाता को हम नमस्कार कर रहे हैं। मानो महाप्रभु कहे कि कैसे दाता हो गया, भिखारी मधुकरी करके खाने वाला मुझको दाता कैसे बोल रहे हो। तो कहते हैं आप बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, अप्राकृत कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम दान कर रहे हैं आप, महान दाता है। अनुभव चैतन्य महाप्रभु कहे कि फिर मूर्खतापूर्ण बातें करने लगा। कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, दूसरा कैसे दे सकता है। कहते हाँ हाँ समझ रहा हूँ, कृष्णाय, मैं कृष्ण को ही नमस्कार कर रहा हूँ। कृष्ण को, तो हाँ आप कृष्ण हैं, तो कृष्ण चैतन्य नाम ने, आप कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में आपका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी, उनके सन्यासी नाम था श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी। निमाई विशंभर छोड़कर केशव भारती उनका नाम रख दिए श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी, तो या कृष्ण चैतन्य भारती, केशव भारती के शिष्य थे। तो आप कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं, आप कृष्ण हैं। कहते हैं देखो, अस्पष्ट थोड़ा भी दृष्टि जिसका होगा वो देख सकता है कि वो काला नहीं गोरा है, और फिर भी कृष्ण कह रहा है। कहते हाँ गौरत्व से नमः, हे गौर कांति से अपने कृष्ण वर्ण को आवृत करने वाले कृष्ण, हे गौर कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप हैं कृष्ण लेकिन कांति गौरत्व से, गौर कांति राधा रानी के कांति से अपने कृष्ण वर्ण को आच्छादित करके आप सन्यासी रूप में घूम रहे हैं, मैं आपको पहचान रहा हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चाहे भगवान लाख कोशिश किए लेकिन भक्त लोग उनको पहचान ही गए। कहते हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद फिर गोविंद लीलामृत का एक श्लोक है, योग्यान मत्तम भुवनम दयालु उल्लाघयन्नप्य करोत् प्रमत्तम स्वप्रेम संपत सुधयाद्भुतेहम श्री कृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। कहते हैं परम कृपाल कृपालुतावश, जिन्होंने अज्ञान मत लोगों को अपने प्रेम संपत्ति रूप अमृत पिलाया और संसार के रोगों से मुक्त करके प्रेमोन्मत कर दिया, प्रेम में पागल कर दिया, उन अद्भुत लीलाकारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का मैं शरण ग्रहण करता हूं। अद्भुत प्रेम, यो अज्ञान मत्तम, अज्ञान से मतवाले संसार के लोग अज्ञान का आनंद भोग रहे हैं, ज्ञान का नहीं। जैसे कोई पागल कभी हंसता है, कभी खिलखिला कर हंसता है, वो अपने मूर्खता में ही, उसी प्रकार संसार के लोग अविद्या का आनंद ले रहे हैं, अज्ञान का। तो अज्ञान मत्तम, अज्ञान में मतवाले होकर लोग संसारिक दुख को भोग रहे हैं, उनको भुवनम दयालु, इस संसार में वो दयालु परम कृपालु करुणा पुरुषोत्तम उल्लाघयन्नप्य करोत् प्रमत्तम, अपना प्रेम देकर स्वप्रेम संपत सुधया भूते हम, अपनी प्रेम रूप संपदा संपदा देकर अमृत पिलाकर, अपने प्रेम संपत्ति रूप अमृत पिलाकर ऐसे संसारिक लोगों को रोग से मुक्त कर दिए। जो पागलपन का रोग है वो दूर हो गया और प्रेमोन्मत हो गए, प्रेम में मत वाले हो गए, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का हम शरण लेते हैं। तो तब महाप्रभु कहे आओ आओ निकट बैठो, निकट बिठाए और कहे सनातन का समाचार सुनाओ। तबे महाप्रभु तारे निकट बसाइला, सनातनेर वर्ता कह तारे पूछिला, रूप कहें ते हो बंदी है राज घरे, तुमी जदि उधार तबे होइबे उधारे। कहते वो तो अरेस्ट हो गए, नवाब हुसैन शाह जेल में बंद कर दिया है, यदि आप उनका उद्धार करेंगे तब उद्धार होगा। तो अब उद्धार करने में देर नहीं है। प्रभु कहे सनातन होइया छे मोचन, अचिराते आमासह होइबे मिलन। तुरंत महाप्रभु कहते हैं बहुत जल्दी सनातन मुक्त होगा और बहुत जल्दी हमसे मिलेगा। आप प्रयाग में मिले हो, काशी में मिलेगा, ज्यादा देर नहीं होगा, बहुत जल्दी शीघ्र ही हमसे मिलेगा। मध्यान करीते विप्र प्रभु रे कहिला, रूप गोसाई से दिवस तथा ही रहिला। तो ब्राह्मण कहे प्रभु अब भोजन कीजिए और रूप गोस्वामी उस दिन वहीं रुके। भट्टाचार्य दुई भाई ये निमंत्रण कैला, प्रभु शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाइला। तो महाप्रभु के अवशेष प्रसाद दोनों को दिए, रूप और अनुपम को। और इसके बाद महाप्रभु का घर त्रिवेणी के गंगा और जमुना के संगम के निकट ही था निवास स्थान, वहाँ पर गए। और अपने निकट ही अनुपम और रूप को स्थान दिए। त्रिवेणी ऊपर प्रभु वासा घर स्थान, दुई भाई वासा कैल प्रभु सन्निधान, अपने साथ ही उनको रुकवाए। तो इसके बाद महाप्रभु एक भक्त हैं वल्लभ भट्ट, वहीं प्रयाग के निकट ही रहते थे अड़ैल गांव में। तो उस समय वो आए और महाप्रभु के आगमन सुनकर उनसे मिलने के लिए आए, उनको प्रणाम किए। वैष्णव थे, कुछ कथाएं तो प्यार के साथ पढ़ने पर विलम्ब होगी, संक्षेप में पूरा कर रहा हूँ। और आ करके दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु से कृष्ण चर्चा करने लगे। दोनों वैष्णव, महाप्रभु तो स्वयं भगवान वैष्णव के रूप में आए थे और भट्ट जी भी वैष्णव थे, तो लेकिन उनका भाव थोड़ा दूसरा था। ये सुनकर आए, लेकिन वैष्णवता तो थी लेकिन ब्राह्मणत्व तो भी ज्यादा था, हींग के डिब्बी में दूसरा पदार्थ था, थोड़ा थोड़ा गंध था, ब्राह्मणत्व तो का गंध था लेकिन वैष्णवता भी। तो दंडवत कर किए, उनको देख करे दोनों भाई, उनको दंडवत किए रूप अनुपम। और अब देखिए जब दंडवत किए भट्ट जी, तो महाप्रभु उनका आलिंगन किए और बैठा करके कृष्ण कथा चालू हुआ। कृष्ण की चर्चा जब भट्ट जी कर दिए तो महाप्रभु के अंदर एकदम कृष्ण प्रेम उभर गया। लेकिन भट्ट के स्टैंडर्ड को समझते हुए महाप्रभु अपने भाव को दबाने लगे, पता नहीं ये ब्राह्मण किस रूप में लेगा, बड़ा दिक्कत हो जाता है। विजातीय लोग होते हैं तो वो कुछ ढोंग पाखंड न समझने, दोष बुद्धि न कर ले, अपराध हो जाएगा। तो अंतर एक गौरगौर प्रेम नहे संवरण, देखी चमत्कार होइल वल्लभ भट्ट मन। लेकिन वल्लभ भट्ट समझ गए। तबे भट्ट महाप्रभु रे निमंत्रण कैला, कहे कि आप मेरे यहाँ प्रसाद के लिए आइए। तो महाप्रभु कहे ठीक है, स्वीकार कर लिए और दोनों से परिचय कराए रूप अनुपम से। तो दोनों भाई दंडवत प्रणाम किए भट्ट जी को, तो भट्ट जी उनको उठाकर आलिंगन करना चाहे तो लोग भागने लगे, कहे नहीं नहीं। दोनों भागने लगा, अस्पृश पामर मुई ना छूए मोरे, मुझको मत छूए, हम छूने लायक नहीं है। भट्टेर विस्मय हिल, भट्ट जी को आश्चर्य हुआ कि दोनों भाग क्यों रहे हैं। लेकिन प्रभुर हर्ष मन, महाप्रभु को बड़ी खुशी हुई रूप का व्यवहार देखकर। भट्टेर कहिला प्रभु तार विवरण, अब देखिए एक साथ महाप्रभु अपने व्यवहार से दोनों का को शिक्षा दे रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। इनमें ब्राह्मणत्व है, दोनों ब्राह्मण है, रूप भी ब्राह्मण है, वल्लभ भट्ट भी ब्राह्मण है, लेकिन भट्ट जी से इनकी उत्कृष्टता है। तो कह रहे हैं इहो नास परसिह, इहो जाति अतिहीन, आप इनको मत छुइए। महाप्रभु कहते हैं इनको मत छुइए, ये अतिहीन जाति के हैं, मुस्लिम की नौकरी करके आए हैं, इनका परिचय मैं बताता हूँ। और वैदिक जागिक तुम्हें कुलीन प्रवीण, आप वैदिक ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण है, उच्च कोटि के ब्राह्मण है, आप में और इनमें बहुत अंतर है, इनका स्पर्श मत कीजिए। तो भट्ट जी कहते हैं प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभु किछु इंगित भंगे जानी। तुरंत भट्ट जी समझ गए कि प्रभु चाहते क्या है। दुहार मुखे कृष्ण नाम करिए छे नर्तन, आ यही दुई अधम नहीं है सर्वोत्तम, कह आप इनको कैसे अधम कह रहे हैं। कहते हैं मुसलमान क्या नौकरी किए हैं, गाय का मांस खाए हैं, नीच है, वास्तव में नीच है, इनको मत छुइए। तो कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं महाप्रभु। अहो बत स्वपचतो गरियान, जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुष तपस्ते जुहु सस्नुवार जा ब्रह्मानुचुरणाम गृणंति जेते। अहो देहुती जी कहते हैं भगवान कपिल देव से अंत में, अहो बत, बत माने आश्चर्य है, अहो आश्चर्य है स्वपचतो गरियान, कुत्ता का मांस खाने वाला चंडाल श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ हो गया, जह जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिस चंडाल के जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है वह चंडाल श्रेष्ठ है। वर्तते जिह्वाग्रे मतलब मन में नहीं, मन में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिह्वा के अग्रभाग पर भी नाम है उसके मुख से कृष्ण गोविंद हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। निश्चित रूप से आप लोग भी श्रेष्ठ हैं। तो जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम है, तेपुष तपस्ते, वह व्यक्ति तपस्या कर चुका है, जो सस्नु आर्जा, वह सभी प्रकार के जितने भी तीर्थ यात्रा है कर चुका है, जितने वैदिक सिद्धांत है, ब्रह्मानुचरणाम गृणन्ति जेते, जितने वैदिक अनुष्ठान है, यज्ञ करना, तीर्थ करना, दान करना, तपस्या करना, सब कुछ कर चुका है, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, वह इतना महान हो जाता है। एक टीकाकार लिखे हैं इस श्लोक के टीका में, भागवत का श्लोक है, तीसरे स्कंद के 33 अध्याय का 7वां नंबर का श्लोक है, देवती जी कहते हैं। तो इसके टीका में एक टीकाकार लिखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज है, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, उसके विषय में अगर कोई जिज्ञासा करे कि ये जज साहब हाई स्कूल पास हैं, ये भारतीय संविधान जानते हैं, वकालत पता है इनको, सारा प्रश्न बेवकूफी पूर्ण होगा, मूर्खता पूर्ण, क्योंकि वेल एजुकेटेड व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई मूर्ख नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वो सारा वैदिक अनुष्ठान कर चुका है, ऐसा नहीं कि एक साधारण व्यक्ति के मुख पर भगवान का नाम निकल सकता है, निकल ही नहीं सकता है। जमदूत लोग कहते हैं तब तो नौकरी खत्म, तो जमराज कहते हैं नहीं नहीं, बहुत लोग हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरति तचरणारविंदम, कृष्णाय नमति यच्छिरय कदापि, ताना न ध्वम अस्तु अकृत विष्णु कृत्यान। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं आता, उनके पास जाओ, जो उच्चारण कर रहे हैं उनके चक्कर में क्यों पड़े हो, वो तो हमारे रेंज के बाहर हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मानुचरणाम गृणन्ति जेते, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वो सबसे बढ़कर है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो यही महाप्रभु सुनना चाहते। सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसीला प्रेमाविष्ट है या श्लोक पढ़ी ते लागिला। वाह आपकी बुद्धि कितना श्रेष्ठ है। सुचि सदभक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जात कलमश स्वपाकोपि बुधै श्लाघ्यो न वेदज्ञोपि नास्तिक। महाप्रभु सुन करके इतना प्रसन्न हुए कि कहने लगे कि वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं। सुचि सद्भक्ति दीपाग्नि, जो व्यक्ति भक्ति के अंगों से समन्वित है, प्रभावित है, भक्ति रूपी दीप्त को जो दीप को जो प्रज्वलित कर लिया है, वह अपने दुर्जाति कलमस को जला चुका है। छोटे वंश में जन्म लेना ये सब, स्वपाकोपि बुधै श्लाघ्यो, चंडाल वंश में जन्म लेने वाला, निम्न कुल में जन्म लेने वाला भी प्रशंसनीय है। वह अपने चंडाल परिवार में जन्म लेकर भी महान काम कर लिया क्योंकि भक्ति किया है। न वेदज्ञोपि नास्तिक, अगर वैदिक ब्राह्मण वेद शास्त्र जानने वाला यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है, नास्तिक है, तो उससे श्रेष्ठ वो चंडाल है। कई श्लोकों में ऐसी बातें कही गई हैं। चैतन्य महाप्रभु तो एक जगह सनातन गोस्वामी से कहते हैं सनातन शिक्षा में कि चाहे कितना ही वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्राह्मण और इसके साथ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और सन्यासी, सब ठीक ठीक अपने नियमों का पालन करते हैं, लेकिन केवल एक माइनस पॉइंट उनके जीवन में रह गया कि वो कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो सब अपने ठीक ठीक धर्म पालन करने वाले नरक चले जाएंगे। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करियाऊ से ही रौरव पड़ी मजे। तो अपने अपने धर्म का एकदम अखंड निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला भी नरक जाएगा यदि वह केवल ब्रह्मचर्य पालन में ही अपना टाइम बिता दिया, भगवान की भक्ति नहीं किया। भक्ति नहीं, कृष्ण यदि कृष्ण नहीं भजे एक शर्त है। और नारद जी कहते हैं कि यदि कृष्ण की भक्ति हो रही है तो दूसरे साधन की जरूरत क्या, और कृष्ण की भक्ति नहीं हो रही है तो दूसरे साधन की जरूरत क्या। दोनों तरह से कहते हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं हो पाई और सारा साधन कर लिए तो क्या फायदा, और जब कृष्ण की भक्ति हो ही रही है तो दूसरे साधन की क्या जरूरत। दोनों बात कह रहे हैं। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए ऊंच कुल में जन्म लेना, ऊंच परिवार में जन्म लेना, या शास्त्र का ज्ञान या वैदिक मंत्रों का उच्चारण, खराटे के साथ संस्कृत बोलने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले, उनकी शोभा वैसे है जैसे मरे हुए लाश का श्रृंगार। खूब मखमल का कपड़ा पहना दिए, खूब फूल चढ़ा दिए, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, सारा गहना सारे अंगों में पहना दिए, तो उस लाश के श्रृंगार का जो शोभा है वही भक्तिहीन लोगों की विद्वता की शोभा है, चाहे वो विद्वान हो या ऊंच कुल में जन्म हो, कुछ भी हो। प्रभुर प्रेमावेश जार प्रभाव भक्ति सार सौंदर्य आदि देखी भटे रहिल चमत्कार। महाप्रभु अनुमोदन करते हुए सब श्लोक बोल रहे हैं। तो इसके बाद उनको प्रयाग जाने के लिए गंगा पार करना था, तो नौका पर चढ़ा करके जमुना पार करना था, जमुना पार करके अड़ैल गांव जाना था। तो महाप्रभु नौका पर चढ़े और जमुना के निर्मल जल देखे तो एकदम भावाविष्ट हो गए, हुंकार करने लगे, सब लोग कांपने लगे कि अरे तो नौका डूब जाएगी, वहीं खड़ा हो गए। किसी तरह सब लोग पकड़ रहे हैं, आस्ते व्यस्ते सबे धरी प्रभु रे उठाई ल, किसी तरह उनको पकड़े, नौका रे ऊपर प्रभु नाचीते लागी ल। अब महाप्रभु भरे नौका करे ठलमल, डूबते लागी ल नौका, जल के भरे जल, उछल उछल कर जल आने लगा। तो किसी तरह सब लोग महाप्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से पकड़ उकड़ कर लेकर अपने घर के तरफ आए और उनको दिव्य आसन दिए, चरण पखारे और स्नान किए जमुना में, तो उनको पहनने के लिए नया कौपिन बहिर्वास दिए, फिर सुगंधित पुष्प माला पहनाए और खूब सुंदर कृष्ण प्रसाद अर्पित किया गया, उनको प्रसाद पवाए और उनका अवशेष प्रसाद रूप और अनुपम को पवाए। फिर मुखवास देकर जब महाप्रभु विश्राम के लिए लेटे तो स्वयं भट्ट जी अपने चरण हाथ से उनका चरण संवाहन किए। तो इसके बाद वहीं भट्ट जी के घर पर ही एक तिरोहिता पंडित, बिहारी पंडित आया जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय। हेन काल आयला रघुपति उपाध्याय, तिरोहिता पंडित बड़ वैष्णव महाशय, सुप्रसिद्ध विद्वान, बिहार के पहले के जिला, अब तो 6-7 जिला हो गया है, पहले के 4 जिला को तिरहुत कहा जाता था, वो था सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो महाप्रभु, अरे प्रभुपाद लिखते हैं तिरोहिता बिहार के 4 जिले सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को मिलाकर तिरहुत प्रदेश था, मिथिला प्रदेश, और इत्रुटिया कहलाते थे ब्राह्मण, तो वो मैथिली ब्राह्मण था। आया और आकर महाप्रभु का चरण वंदन किया तो महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हुए सुनकर, ब्राह्मण कुछ सुनाइए कृष्ण के विषय में, तो अपने हाथ से ग्रंथ लिखे थे कृष्ण के विषय में, कृष्ण लीला का श्लोक पढ़ने लगे। महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हुए, एक श्लोक बोले, श्रुतिम अपरे स्मृतिर इतरे भारत मन्ने भवन्तु भवभीता अहम यह नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। ओहो महाप्रभु तो भाव विह्वल हो गए। कहते हैं कुछ लोग संसार से डर कर श्रुति का शरण लेते हैं, कुछ लोग स्मृति का शरण लेते हैं, कुछ लोग महाभारत का शरण लेते हैं, भगवद गीता का। भवन्तु भवभीता, संसार के भय से भयभीत होकर लोग शास्त्रों का शरण लेते हैं, लेकिन अहम यह नंदम वंदे, मैं इन स्मृति पुराण और भारत का शरण नहीं लेता हूँ, मैं तो नंद बाबा के चरणों का वंदना करता हूँ जिनके आंगन में पर ब्रह्म खेलता है लौटता है। तो एकदम महाप्रभु बैठ गए, कहते हैं कि आगे कहो, प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिल, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिल। तब कहते हैं कम प्रति कथितुमीशे संप्रति को वा प्रति यमायातु गोपति तनया कुंजे गोप वधु बिटम ब्रह्म। कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं, कौन मेरी बातों को विश्वास करेगा, कोई विश्वास करने वाला है क्या, मैं कहूं। वह परब्रह्म अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म, प्रभुपाद के शब्दों में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जमुना के तट पर गोपियों के कुंज में विहार करता है, वह किशोरी का चरण संवाहन करता है। गोब बधुटी विटम, वह लंपट, वह राधा रानी की लंपटता करता है, उसके अलावा उसका कोई सुध ही नहीं है कि और भी जगत में कुछ काम है, कोई विश्वास करेगा। प्रभु कहे कहो हो पढ़े कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभु देह मन आलू आईला, एकदम महाप्रभु भाव विह्वल हो गए। प्रेम देखी उपाध्याय हिला चमत्कार, उपाध्याय तो विद्वता में श्लोक बोल रहे हैं, अब महाप्रभु को तो एकदम सात्विक विकार आने लगा, वो सोचने लगा उपाध्याय मनुष्य न है हो, यह मनुष्य नहीं है। उपाध्याय भी आखिर लक्षण तो शास्त्रों का समझता था, मनुष्य नहीं है, इतना इसके आंखों में अविरल आंसू, शरीर रोमांचित हो रहे हैं, एकदम जैसे कटहल के वृक्ष होते हैं वैसा रुखड़ा हो जाता था महाप्रभु का शरीर, एकदम रोमावली खून मांस लेकर खींच जाता था। कहे कि मनुष्य नहीं हूं कृष्ण, करिला निर्धार, साक्षात भगवान है। तो प्रभु का ही उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन है, श्याम एव परम रूपम कहे उपाध्याय, श्याम रूपे व वास स्थान श्रेष्ठ मान काय, पूरी मधुपुरी वाला कहे उपाध्याय। तो कहते हैं अच्छा, अब सबसे श्रेष्ठ बाल बाल्य पौगंड किशोर श्रेष्ठ मान काय, कहते हैं भगवान के तीन अवस्था है, बाल पौगंड और किशोर, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, दे वय कैशोरकम ध्येयम कहे उपाध्याय किशोर रूप, रसगण मध्य तुम श्रेष्ठ काय मान काय, कहते हैं सबसे श्रेष्ठ रस क्या है, आद्य व परो रस कहे उपाध्याय, कहे कि वाह आप तो बहुत अच्छा सिद्धांत सुनाए, कहे हाँ श्याम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी वस वय कैशोर कम ध्येयम आद्य एव परो रस, श्याम ही रूप सबसे सुंदर रूप है और सबसे श्रेष्ठ पुरी है मधुपुरी ब्रजमंडल, और सबसे सुंदर रूप है वय जो जवानी कैशोरकम ध्येयम और आद्यम एव परो रस, सबसे बढ़कर है रस रास, प्रेमावेश प्रभु तारे कैल आलिंगन, प्रेमे मत हैया तेहो करे नर्तन, देखी बल्लभ भट्ट मने चमत्कार हैला, दुई पुत्र आनी प्रभु चरणे पड़ीला। तो भट्ट जी अपने दोनों पुत्रों को लाकर प्रणाम कराए और उपाध्याय से महाप्रभु मिले, इसके बाद अब प्रयाग चलने की इच्छा हुई तो महाप्रभु गंगा के पथ से प्रयाग आए, संगम से होते हुए बहुत भीड़ था, तो लोक भीड़ भय प्रभु दशा में धे जाइया, घूम कर गए लोग आ जाते थे, और दशा समेत घाट पर अवसर पाकर महाप्रभु रूप गोसाई शिक्षा करा शक्ति संचारिया, शिक्षा करान शक्ति संचारिया, रूप गोस्वामी को दशा समेत घाट पर शिक्षा दिए 10 दिन, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाई ला प्रभु भागवत सिद्धांत, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व इसी को जीव गोस्वामी षट संदर्भ लिख दिए हैं जो महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनीला रूपे कृपा करी तहा सब संचारीला, जो राय रामानंद के साथ दक्षिण भारत यात्रा में जो कुछ भी सुने थे सब कुछ रूप गोस्वामी को दे दिए, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला, अपने शक्ति तो संचारित कर ही दिए, सारे तत्व में एकदम मास्टर बना दिए। शिवानंद सेन के पुत्र हैं कवि कर्णपुर, उन्होंने अपने ग्रंथ में महाप्रभु के साथ रूप के मिलन की कथा को जहां तहां लिखे हैं, काले नविंदा वन के लिवार्ता लुप्ते तिताम्ख्या पै तुम विशिष्य कृपा मृते नाभिशिचेश देव तत्व रूपम च सनातनम च। कवि कर्णपुर लिखते हैं कि जो वृंदावन की लीला काल के प्रभाव से लुप्त हो गई थी उसको महाप्रभु अपने विशिष्य विशेष शिष्य रूप और सनातन को प्रदान किए, यह प्रागेव प्रिय गुणई गणई गाढ़ बधोपि मुक्तो गेहा ध्यासाद रस इव परो मूर्त एवाप्य मूर्त प्रेमा लापई दृढ़ तरंग तर परिस्वंग गरंगई प्रयागे तम श्री रूपम सममनु मेनानु जग्राह देव। कवि कर्णपुर विशेष रूप से लिखते हैं चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कि श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के दिव्य गुणों को पहले से ही समझते थे, उनके प्रति आकृष्ट थे, और जब वे अपने मंत्री पद से हटकर वैराग्य लिए तो महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वे महाप्रभु से मिले और प्रयाग में मिल करके महाप्रभु से सब कुछ प्राप्त किए और महाप्रभु आलिंगन करके अपने कृपा प्रदान किए, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तत्तात रूपे सो विलास रूपे, साक्षात भगवान के पास जो भी क्षमता है, उनकी प्रियता, जो भी सिद्ध स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र रूप गोस्वामी प्रिय स्वरूपे, देखिए रूप गोस्वामी का परिचय दे रहे हैं कि स्वरूप दामोदर के प्रिय हैं, और दैत स्वरूपे हु बहु महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दैत स्वरूप में है, प्रेम स्वरूपे अत्यंत प्रिय स्वरूप में है, सहजा भी रूपे एकदम साक्षात महाप्रभु के प्रेम के साक्षात स्वरूप है, निजानुरूपे अपना जो महाप्रभु का रूप है जो भक्ति ज्ञान है, प्रभुरेक रूपे तत्तात रूपे सो विलास रूपे, सारे सिद्धांत को महाप्रभु उनको दे चुके थे, इसलिए महाप्रभु के कृपा दृष्टि से वे शास्त्र का प्रणयन किए। इस प्रकार कवि कर्णपुर रूप सनातन के प्रति महाप्रभु की कृपा की चर्चा किए हैं अपने ग्रंथ में। तो एक विशेष बात कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारांश कि महाप्रभु जत बड़ बड़ भक्त मात्र, जितने महाप्रभु के टॉप मोस्ट गण थे गौर परिकर, जितने श्रेष्ठ थे रूप सनातन सवार कृपा गौरव पात्र, रूप सनातन सबके कृपा पात्र थे, चाहे वो अद्वैताचार्य के हों नित्यानंद प्रभु के हों सबका। कि हा यदि देशे जाए देखी वृंदावन, तार प्रश्न करे प्रभु पारिषद गण। जब कोई वृंदावन से लौट कर आता था तो महाप्रभु पूछते थे स्पेशल, और भले छूट जाए लेकिन ये जरूर पूछते थे, कहत अहा कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे, कैसे वैराग, कैसे भोजन, कहाँ रहते हैं, कैसे उनका वैराग चलता है, क्या भोजन करते हैं, कैसे अष्टपहर करें कृष्णे र भजन, तबे प्रशंसिया कहे से ही भक्तगण। तो भक्त लोग सुनाते थे, अवसर पाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, और निकेत दुने दुहे बने जत वृक्ष गण, घर नहीं बनाए हैं, कुटिया नहीं बनाए हैं, तब कहाँ रहते हैं, पेड़ के नीचे। अच्छा, तब कोई बड़ा पेड़ है अच्छा छायादार क्या जहाँ रहते हैं, ना एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, कोई एक जगह निर्धारित नहीं है कि चलो भांडीर बट के पास है अच्छा छायादार वृक्ष है बस जम गए वहीं, कहते हैं नहीं नहीं एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, धाम में भी एक स्थान में आसक्ति ना हो जाए, बरसाना का वातावरण ठीक है वहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं 84 कोस में समता बुद्धि रहे इसके लिए एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रहते थे। अच्छा, घूमते ना, खाते क्या है, तो विप्र गृह स्थूल भिक्षा, कहा मधुकरी, कभी कभी ब्राह्मणों के यहाँ विशेष आग्रह पर भर पेट भी खा लेते थे एक जगह, और कभी मधुकरी आधा आधा रोटी मांग कर कई घरों से, जैसे मधुमक्खी कई फूलों से रस लेती है उस वृत्ति को मधुकरी कहते हैं, और कभी शुष्क रोटी चना चिवाय भोग परिहरी, कभी सूखा रोटी। अब रोज रोज कौन मधुकरी, एक दिन निकल गए तो 10-20 रोटी मांग लिए और वही सूख जाता था, जमुना जल में भिंगो कर बिना नमक के चबा लेते थे। करोया मात्र हाथे कांथा छेड़ा बहिर्वास, हाथ में एक कमंडलू मिट्टी का बना हुआ करोया, और कांथा ओढ़ने का एक गुदड़ी, और बहिर्वास बस अंग ढकने के लिए, ये उनके शरीर का ड्रेस का वर्णन हो गया। काम क्या करते हैं, तो कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, कभी कृष्ण का नाम लेते लेते नाचने लगते हैं, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंड शयने, नाम संकीर्तन से है नहे कौन दीने, रोज कीर्तन करते हैं थोड़ा सा विश्राम करते हैं। कबू और कैसे कैसे भजन करते हैं, तो कहते हैं कबू ये वे भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, कभी कभी भक्ति शास्त्र का लेखन करते हैं, और चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, तो आपके ही विषय में चर्चा करते हैं, यही कथा सुनी महान तेरे महासुख है, चैतन्य र कृपा जाहे ताहे की विस्मय, जिस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है उसके विषय में क्या आश्चर्य करना है। चैतन्य र कृपा रूप लिखिया छेनापने, रूप गोस्वामी स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखते हैं। रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगला चरणे, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के मंगला चरण में लिखते हैं रूप गोस्वामी। हृदय जस्य प्रेरणया प्रवर्तितोहम बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। यद्यपि मैं बिल्कुल नीच प्राणी हूँ, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है, किंतु कृपा करके मुझे भक्ति विषय ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी गई कि आप भक्ति ग्रंथ लिखो। मैं चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ। तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य, नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों का प्रणयन करने का अवसर दिया है। वे हमको आज्ञा दी, यही मत 10 दिन प्रयागे रहिया, श्री रूप शिक्षा दिला शक्ति संचारिया। श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन रुक करके शिक्षा दिए और फिर शक्ति संचार किए। ठीक, तो अब शिक्षा की बात तो नहीं कही जाएगी, मिलन की बात कर दी गई। महाप्रभु प्रारंभ करते हैं यहाँ से। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत रूपे कही विस्तार ना जाए वर्णन। पारावार सुन गंभीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हार चखाइते तार कही एक बिंदु। मैं भक्ति रसा में सिंधु के भक्ति रस अमृत समुद्र से एक बिंदु तुमको टेस्ट कराऊंगा, थोड़ा सा टेलर, पूरा फिल्म तो तुमको करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगा। ये चालू करते हैं। ही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष जोनिते करे भ्रमण। यहां से ज्ञान प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, सब आगे समझाएंगे किस तरह से जीव कृष्ण का शरण लेता है। यहां से शिक्षा प्रारंभ होती है। 10 दिन तक शिक्षा दी है। यह अलग टॉपिक है, मिलन की कथा हो गई। रूप गोस्वामी का दूसरे बार का मिलन प्रयाग में। अब सनातन गोस्वामी के मिलन की कथा धैर्य से सुनिए। तो सनातन गोस्वामी का वर्णन करते हुए अपने मंगलाचरण में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम, नीचो यपि जत प्रसादात साद भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनमें अद्भुत अद्भुत अनंत ऐश्वर्य है, जिनके कृपा से एक नीच व्यक्ति भी भक्ति विज्ञान के प्रचार करने में समर्थ हो सकता है, भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन कर सकता है जिनकी कृपा से। तो सनातन गोस्वामी गौड़ेश्वर नवाब हुसैन शाह के जेल में हैं। रूप गोस्वामी का पत्री मिला। पत्री जब पढ़े तो बड़ा आनंदित हुए कि महाप्रभु वृंदावन गए, रूप और अनुपम गए। खुशी दो प्रकार की, एक रूप का महाप्रभु से मिलने जाने की खुशी, और दूसरी खुशी कि अब हमें भी निकलने का थोड़ा सा रास्ता मिल गया कि मोदी के पास 10,000 रुपया है, ये पत्र में लिखा गया था। तो उस जेलर से बात कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, और उसी के भाषा में बात करते हैं। मुसलमान जेलर था। तुम्ही एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, किताब कुरान शास्त्र आछे तुम्हार ज्ञान, कुरान में तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम जिंदा पीर हो माने सिद्ध पुरुष हो। एक बंदी छोड़ा यदि निज धर्म देखिया, एक बंदी को अगर आप धर्म पर विचार करके छोड़ देंगे तो संसार होते तारे मुक्त करे न गोसाइया। अगर इस तरह से आप मुझको छोड़ देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा संसार से मुक्त होने के लिए। छोड़ने पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बंगाल में घूमता रहूंगा, मैं मक्का मदीना हज करने जाना चाहता हूँ। तो आपको धर्म होगा, आप विचार कीजिए, संसार से एक व्यक्ति को मुक्त करने का चांद, आप भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। और देखो एक विशेष बात, पूर्वे आमी तुम्हार करिया छे उपकार, याद करो। मुसलमान लोग बड़ा नमक का शरीयत मानते हैं, मैं आपकी नियुक्ति किया हूं, याद है ना, मैं आपका उपकार किया हूं, आज जेलर बने हो, भले मैं कैद खाने में हूं, लेकिन तुम ही आमा छाड़ी करो प्रति उपकार, हमको छोड़कर आप उपकार का बदला चुकाओ। ऐसे फोकट में नहीं कह रहा हूं, इसके बदले में 5 सहस्त्र मुद्रा तुम ही करो अंगीकार, आगे 5,000 सोने का मुहर दे रहे हैं। आज के समय में करोड़ों अरबों रुपया हो जाएगा, 5,000 सोने का मुहर दे रहे हैं। पुण्य अर्थ दुई लाभ होई बे तुम्हार, पुण्य भी मिलेगा, उपकार करोगे तो हम उपकार किए हैं, प्रतिपकार करोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा और अर्थ भी मिलेगा, 5,000 रुपया भी। तबे से ही जवन कहे सुनो महाशय तुम्हार छाड़ीबे किंतु करी राज भय, हे महाशय मैं आपको छोड़ तो सकता हूं लेकिन नवाब का भय है। कहे भय किस बात का भय, तो हमसे पूछेगा तो उपाय बताता हूं ना, सुनो। सनातन कहे तुम्ही ना करो राज भय, दक्षिण गया छे यदि लेवटी आयो आयो, जब दक्षिण से उधर से उड़ीसा से लौट कर आएगा तब उसको बताना। क्या बताना है कि साधारण कैदी जैसे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा ना, उनको शाम के समय गंगा तट पर वॉकिंग के लिए छोड़ा जाता था, रोज जाते थे, कैद से निकलते उनके साथ रहते थे सिपाही पुलिस लोग और जाते थे घूमने के लिए, कभी कभी फ्री भी छोड़ा जाता था, कभी कभी हाथ में हथकड़ी लगाए हुए घूमने के लिए। तो गंगा निकट घूम रहे थे शाम को और तब तक अचानक गंगा में कूद गया, ध्यान ही नहीं कोई दिया, अनेक देखिला तार लाग ना पाईला, दानुका सहित डूबी कहां बही गेला, कह देना गंगा में डूब गया बह गया, बतला देना किछु भय नहीं। कहते हैं बह गए और आप कहीं मिल गए पकड़ा गए तो फिर क्या होगा, तो पकड़ में आ गए तब तक कहते हैं किछु भय नहीं हम ये देश न रहब, दरबे से है आमी मक्का ते जाइब, आप चिंता मत करो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मक्का मदीना हज करने जा रहा हूं ना, मक्का मदीना उनका वृंदावन था, कह रहे हैं कि मैं मक्का मदीना में रहूंगा, आऊंगा ही नहीं। तथापि जवन मन प्रसन्न न देखी लो, फिर भी उस जवन का मुसलमान जेलर का मन प्रसन्न नहीं था, तो कहे 2,000 और ले लो यार, 7,000 मुद्रा तार आगे राशि कैला रख दिए। तो लोभ हैला जवनेर मुद्रा देखिया, तो रात्रे गंगा पार कैला दारू का काटिया, रात को एकदम सब लोग सो गए तब पार किया, उनको जेल से निकाला, गंगा द्वार पथ छाड़ीला नारे जहां जाई थे, रात्रि दिने चली आईला पतड़ा पर्वते। तो गंगा में नहीं कूदे वो तो कहने के लिए था, गए निकले और रात रात में निकल करके वो चले गए। तो एक पहाड़ पड़ता था उधर, गंगा पार करने के बाद कनाई नटशाला के बाद भागलपुर के तरफ पातड़ा पर्वत पहाड़, वहां पे भौमिक रहता था। आज भी बिहार में भूमिहार बड़ी प्रसिद्ध है, वो किसी जाति के नहीं होते हैं। तो वो वहां रहता था, पर्वत पार कर आमा विनती करीला, जंगल था बहुत बिहार रास्ता पहाड़ी, तो एक गेस्ट हाउस बना कर रखा था और एक गणिका रखा था हाथ देखने वाला, और तो उसको से भूयार संगे है हाथ गणिता, हाथ देख कर समझ जाने वाला इसके पास क्या है, भूयार काड़े कहे से जानी यही कथा। और जो लोग आते थे गेस्ट हाउस में रुकते थे उनको खिलाता पिलाता और वो बतला देता था वो ज्योतिषी कि इसके पास इतना मुहर है, इतना पैसा रखा है, रात को खिला पिला कर सुला कर सारा पैसा ले लेता या कभी कभी जान भी मार देता था। तो बतला दिया कि इसके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। तो सनातन गोस्वामी एक अंतरंग सेवक ईशान को साथ ले लिए, ईशान नामक एक सेवक था, बड़ा अंतरंग सेवक था। तो वो कहा कि आपकी सेवा में मैं चल सकता हूँ, पहले से सेटल प्रोग्राम था, अब चल दिया वो साथ में। तो उसके पास 8 सोने का मुहर था, 8 केवल, 7,000 दे दिए जेलर को, 3,000 तो अभी मोदी के पास ही छोड़ छाड़ कर चले गए। जब गए तो रात्रि में भोजन बन रहा था इन लोगों के खाने के लिए, सारी सुविधा रहने खाने पीने की सब, सामने नदी बहुत सुंदर, नदी में स्नान किए, 2 दिन से उपवास किए थे, रास्ते में चलते चलते तो भोजन तैयार है, सब कुछ सुविधा रहने के। तो राजमंत्री सनातन बिचारी लमने दुई उपवास कैला रंधन भोजने, राजमंत्री सनातन बिचारी ल मने, तो 2 दिन से उपवास किए थे, ईशान उनको बनाया, अपने हाथ से भोजन बनाए, भोजन किए, लेकिन सनातन को नींद नहीं लग रहा है। कहते हैं ये भूया केने मोर सम्मान करीला, इसे तो कोई परिचय नहीं है, क्यों इतना आदर कर रहा है, ईशान से पूछ रहे हैं। तो मन में विचार कर रहे हैं, ये तो चिंतित सनातन ईशान ने पूछी लो, ईशान से पूछते हैं तुम्हारे ठाई जानी कि द्रव्य अच्छा है, तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? ईशान कहे मोर ठाई 7 मोहर है, 8 मोहर रखा था तो 1 छिपा कर बोला 7 मोहर है। तो सुनी सनातन तारे करीला भर्सन, संगे केने आनिया छे यही काल जम, मूर्ख कहीं का तुम जम लेकर चलते हो, जान मरवा देगा, 2 पैसा। तबे से ही 7 मोहर हस्ते थे करिया मांग लिए और भूया के पास ले जाकर, जो गेस्ट हाउस का मालिक था उसके पास दिए, 7 मोहर ले जाकर दिए, कहे मैं 7 मोहर मेरे पास है, इसको आप रखिए, इसे आप हमको रास्ता पार कराएंगे अपने सेवकों से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ गेस्ट हाउस में रुकने का, खाने पीने के लिए रखिए। तो राजबंदियामी गंगा द्वारे ते ना पारी, पुण्य हवे पर्वतामा देह पार करी, हम राज के बंदी हैं, जेल से निकलकर भागे हैं, हमको जल्दी पार करना है, रात्रि रात्रि में हमको पार करा दीजिए, आपको पुण्य होगा और ये पैसा आप अपने पास रखिए। भूया हंस कर कह रहा है आमी जानिया छे पहले 8 मोहर है तुम्हारे सेवक कहाँ चले, 8 रुपया तुम्हारे सेवक के पास है, आज रात्रि में क्या होता जानते हो, तुमा मारी मोहर लाई ताम आजी कार रात्रे भाल हैला कहिला तुम्ही छुटी लाल पाप है ते, आज रात में तुम्हारा बध करके मैं मुहर ले लेता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मैं पाप से बच गया, तुम अपने आप पैसा ला कर दे रहे हो। तो संतुष्ट है ना मामी मोहर ना लेब, तुम्हारे व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ, मुझको पैसा नहीं चाहिए, पुण्य लागी पर्वत तो मैं पार करी दीब, तुमको पार करा दूंगा पुण्य के लिए। गोसाई कहे कि हद द्रव लेबे आमा मारी, कोई तो मार कर ले ही लेगा ना, पता नहीं किस किस बिहड़ रास्ते से, आप नहीं लेंगे तो कोई दूसरा मार डालेगा, तो अमार प्राण रक्षा करो द्रव्य अंगे करी, आप इसको ले लीजिए और हमारी प्राण की रक्षा कीजिए। तब भूया गोसाई संगे चारी पाइक दिल रात्रे वन पथे पर्वत पार कर, 4 लोगों को भेज दिया उनके साथ और कहा कि इनको पार कराओ। तो इस प्रकार जमींदार सनातन गोस्वामी के साथ भेज दिया, रास्ते से होकर वे लोग उनको पार कराए। अब पार होने के बाद, पर्वत पार करने के बाद जब सुबह हुआ, तब सनातन गोस्वामी ईशान का क्लास लगाते हैं। तबे पार हैया गोसाई पूछिला ईशाने, जानी शेष द्रव्य किछ हुआ छे तुम्हारे स्थाने, अभी भी कुछ पैसा है ना? ईशान कहे 1 मोहर आछे अवशेष। गोसाई कहे मोहर लैया जा तुम्ही देश, तुम्हारे जैसे सेवक की जरूरत नहीं है, जब स्वामी से कपट कर सकते हो तो सेवा क्या करोगे, लौट जाओ तुम अपने देश में जाओ, 1 रुपये की बहुत कीमत है उसको संभालो और मेरे साथ नहीं जा सकते। तारे विदाई दिया गोसाई चली लाए केला। अब सेवक जिद नहीं कर सकता है, डांट कर भगा दिए, हाथे करो या छिड़ा कंथा निर्भय हैला, अब कुछ नहीं है, छीनने वाला चीज कोई धन नहीं, हाथ में करोया है कमंडल मिट्टी का कांथा बस। चली चले गोसाई रायला हाजीपुरे, संध्या काले बसिला एक उद्यान भीतरे। तो चलते हुए वो हाजीपुर आए, हाजीपुर पटना के पास एक बहुत बड़ा हाट लगता है, आज भी लगता है, पशु मेला के लिए विश्व में जाना जाता है हाजीपुर। तो वहां हाथी घोड़ा भी बिकते हैं बड़े बड़े। तो उस हाजीपुर में श्रीकांत नामक उनका बहनोई रहता था सनातन गोस्वामी का, वो गोसाईर भग्नीपति करे राज काज, नवाब हुसैन शाह के नौकर थे और यहाँ से घोड़ा खरीद खरीद कर सेना के लिए भेजते थे। 3 लाख मुद्रा राजा दिया छे तारस्थाने, 3 लाख मुहर लेकर आए थे, घोड़ा मूल्य लैया पठाए 5 सारस्थाने सेना के लिए भेजते थे। तो उस श्रीकांत के पास अपने बहनोई से मिले तो सनातन गोस्वामी को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सनातन गोस्वामी मिलने गए वहां, दोनों मिलकर अपना इष्ट गोष्ठी किए, कैसे जेल में गए कैसे मुक्त हुए सारी कथा बहनोई से तो कह दिए। तो कहे कि ठीक है 2 दिन यहाँ रुको और साफ सुथरा कपड़ा पहन लो, ये दाढ़ी वाड़ी शेविंग कर लो, ठीक ठाक गंदा वस्त्र त्याग दो। गोसाई कहे कि मैं यहाँ रिश्तेदारी करने नहीं आया हूँ। गोसाई कहे एक क्षण यहाँ ना रही बा, गंगा पार करी दे एक क्षण चली बा, तुरंत जाऊंगा हाजीपुर से पार कीजिए, काशी के तरफ जाना है, रुकना नहीं है आपके पास। राज कर्मचारी हो, कोई ना कोई व्यक्ति आ सकता है, पता लग जाएगा, बस बस इसी रात्रि में जाना है। तो श्रीकांत तो उनके सामने बहुत छोटा व्यक्ति थे ना, बहनोई भले थे लेकिन जहाँ प्राइम मिनिस्टर उनका ही नियुक्त किए हुए सब नौकर थे लोग। कहे ठीक है तो कुछ तो ले लीजिए। तो एक भोट कम्बल दिए, कीमती कम्बल उनका, यत्न करी ते हो एक भोट कम्बल दिल, गंगा पार करी दिल, गोसाई चली लो। तबे वाराणसी गोसाई आई ला कत दिन, कुछ दिन चलकर वो वाराणसी में आए और महाप्रभु का आगमन वाराणसी में हो चुका था। जब सुने कि महाप्रभु वाराणसी में आए हैं तो बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रशेखर घर आसी द्वारे ते बसीला, परिचय ज्यादा नहीं पूछना था, महाप्रभु कहाँ रुके हैं कैसे हैं, एकदम इतना लोग महाप्रभु के साथ होते थे कि उनको पता चल गया कि चंद्रशेखर के घर पर रुके हैं, तब वो आ गए। द्वारे एक वैष्णव है बोलाया तहारे, महाप्रभु भीतर घर में थे, चंद्रशेखर जी के से कहे कि द्वार पर एक वैष्णव आया है उनको बुलाइए। चंद्रशेखर जी निकल कर आए तो आकर कहते हैं, देख कर लौट गए, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नहीं के द्वारे, कोई वैष्णव नहीं है द्वारे, तो वैष्णव नहीं, प्रभु ने कही ला दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है, के है कोई है ना, प्रभु पूछते हैं कोई है, हाँ ते हो एक दरवेश आछे द्वारे, एक मुसलमान है, तारे आनो प्रभु आके कही ला तारे, उसी को बुलाइए। अच्छा तो कह रहे वैष्णव है, हम बुलाइए। तो प्रभु तुम्हारे बुलाए आयशो दरवेश, अरे दरवेश, दरवेश जो भद्दा रूप धारण किया है दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर मुस्लिम, आओ आओ तुमको बुला रहे हैं महाप्रभु, सुनी आनंदे सनातन करीला प्रवेश। ताहते अंगे देखी प्रभु धाइया आईला, उनको देखते ही महाप्रभु दौड़े, तारे आलिंगन करी प्रेमा विष्ट हैला, पकड़ कर आलिंगन कर लिए, प्रभु स्पर्श से प्रेमाविष्ट हैला सनातन, मोरे ना छुई कहे गदगद वचन, वो भाग रहे महाप्रभु दौड़ कर पकड़ लिए। दुई जने गला गली रोदन अपार, देखी चंद्रशेखर हैल चमत्कार, चंद्रशेखर जी चकित हैं इस मुसलमान से ऐसे मिल रहे। तबे प्रभु तारे हाथ धरी लैया गेला, पिंडार ऊपर अपने पास बसाईला, पकड़ कर चबूतरे पर बैठे जहां महाप्रभु बैठे थे वहां बैठाए और श्री हस्ते करें तार अंग समार्जन, सनातन दंडवत प्रणाम किए थे, उनके शरीर में धूल लग गया था, अपना उतरिए से लेकर महाप्रभु उनके शरीर को के अंग का समार्जन कर रहे हैं। तेहो कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्शन, सनातन कहते हैं प्रभु मुझे मत छुइए, मेरा स्पर्श मत कीजिए, प्रभु कहे तुम्हार स्पर्शी आत्म पवित्र पवित्रते भक्ति बोले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। करे प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए तुमको स्पर्श नहीं कर रहा हूँ सनातन, मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। तुम भक्ति के बल से संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने में समर्थ हो। भवद विधा भगवता तीर्था तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांतस्ते न गदाभृता। जो भगवान गदाभृत को गदाधर भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलता है वो तीर्थों की कमी को भी दूर करता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, तीर्थों में जो पवित्रता आ जाती है, तीर्थ पवित्र करने वाला चीज है। गंगा यमुना त्रिवेणी प्रयाग या हरिद्वार वाराणसी ये सब तीर्थ हैं, लेकिन उन तीर्थों में भी अपवित्रता आ जाती है। जब पापी लोग ज्यादा वहां आने लगते हैं तो तीर्थ अपवित्र होने लगता है। गंगा जब पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई तो भगीरथ जी से दो शर्त रखी कि एक तो मेरे तेज बेग को पृथ्वी नहीं रोक पाएगी, पृथ्वी को फोड़ कर मैं पताल में रसातल में चली जाऊंगी, क्या फायदा होगा, कहां मेरे बेग को रोकोगे, ऊपर से गिरने वाले धार को कहां रोक पाओगे। और दूसरी समस्या कि मेरे महिमा को जानकर सारे पापी लोग गोता लगाने लगेंगे तो मैं तो उन पापों से गंदी हो जाऊंगी, फिर मेरा पाप कहां धोया जाएगा। तो भगीरथ जी कहते हैं केवल पापी ही नहीं स्नान करेंगे, भगवत परायण भक्त लोग विष्णु के चरण धोवन चरणोदक समझकर अवश्य आप में स्नान करेंगे। जब ऐसे निष्किंचन महात्मा आप में गोता लगाएंगे तो आपका पाप धुल जाएगा, इसका तो टेंशन ही मत लो। वे लोग अत्यंत दयनीय भाव में विष्णु पादोदक समझकर आप में गोता लगाएंगे और आपका पाप धुलेगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब रह गई बात आपको धारण करने का, तो जब जब इस पृथ्वी पर इस तरह के विषम परिस्थिति आती है तो उसके लिए भगवान शिव का शरण लिया जाता है। समुद्र से विष निकला तो दूसरे का बस नहीं था पीने का, उन्हीं के शरण लिया गया। तो मैं भी एक बार शरण लेता हूं कि प्रभु गंगा के बेग को धारण करो, मैं मनाऊंगा शिव जी को, कही ठीक है मना लो और तैयार हो जाए तो बोल देना। तो शिव जी के पास प्रार्थना करने के लिए स्तुति करने के लिए बहुत तत्पर हुए, वर्षों लगा। शिव जी आए, कहे क्या बात है भगीरथ, तो ये गंगा आने वाली है उनकी बेग धारण करा, पहले क्यों नहीं बता दिया, कह दो आने को, जटा फैलाए। और गंगा आई, भगवान शिव भगवान के चरणोदक समझकर विष्णु का गंगा अपने गंगा को जटा में ही धारण कर लिए, उसी में भ्रमण करने लगी। अलग से प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु आपकी जटा की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं गंगा को बुलाया, अपने पितरों के उद्धार के लिए बुलाया। तब थोड़ा सा गंगोत्री से गंगा छोड़े तो दोनों समस्या हल हो गया। तो भक्त लोग ऐसे तीर्थों में घूमते हैं, आप तो ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो। नमे भक्त चतुर्वेदी, जो रूप गोस्वामी के लिए बोले हैं, मद भक्त स्वच्छ प्रिय तस्मय देयम ततो ग्राह्य सच पूज्यो यथायम। फिर कहते हैं आगे, सनातन निराश होने की बात नहीं, विप्रा दिशद गुण जुता दरविंद नाभ पादा रविंद विमुखा सपच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरिमान। ये प्रहलाद महाराज अपने स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु आश्चर्य है, इसके पहले के श्लोक में कहते हैं कि इतने बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा आदि आपके पास आने का हिम्मत नहीं कर पाए, जो धारा प्रवाह से अक्षुभ भाव से जो आपकी स्तुति कर सकते हैं, उनके पास अपार क्षमता है आपके गुण गाने का, लेकिन उनका हिम्मत नहीं पड़ा आपके पास आने का। लक्ष्मी तक भी सहम गई और मेरे जैसे असुर कुलोत्पन्न एक मासूम बच्चा आपको शांत कर दिया, आप मुझसे प्रसन्न हो गए, आज स्पष्ट हो गया ये विशेषता कहां से आई है मुझ में। कहते हैं मैं समझ गया केवल छह नहीं बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि आपके चरणा रविंद का विमुख हो, पादा रविंद विमुखात, चरण कमल से विमुख है, तो स्वपचम वरिष्ठ वरिष्ठम, आपके चरण कमलों में आसक्त वह चंडाल श्रेष्ठ है उस ब्राह्मण से। क्यों? कि मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ, वह चंडाल अपना मन, अपनी वाणी, अपना कर्म सब कुछ आप में समर्पित कर दिया है, और इसके कारण प्राणम पुनाति सकुलम, अपने आप के साथ अपने पूरे परिवार को पवित्र कर देता है, और वह अहंकारी ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता है। न तो भूरिमाना, वह सोचता है कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, बड़े श्रेष्ठ हैं, इस अहंकार के कारण ब्राह्मण अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता है। तो सनातन ऐसी बात नहीं है, आप तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तुम्हार गुण, सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण, तुम्हारे जैसे भक्त को देखने में, तुम्हारा स्पर्श करने में, तुम्हारे गुणों को गाने में, ये सारे इंद्रियों की ही सार्थकता है, इंद्रियों का तो फल ही यही है। अश्लो फलम त्वा दिश दर्शनम ही तन्नो फलम त्वा दिश गात्र संगह जिह्वा फलम त्वा दिश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भगवता ही लोके। पृथ्वी देवी प्रहलाद महाराज की स्तुति की है एक बार, तो वह श्लोक है, पृथ्वी देवी कहती है उसी श्लोक को महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन के लिए। अश्रो फलम त्वा दिश दर्शनम ही, आप जैसे भक्त को देखने में इस आंख की सार्थकता है, वह आंख फूट जाए, अंधा हो जाए जो अपने आंख से वैष्णव का दर्शन नहीं किया। तो अश्रो फलम त्वा दिश दर्शनम ही, इस आंख की सफलता है आप जैसे वैष्णव का दर्शन करने में, तन्नो फलम त्वा दिश गात्र संगह, और इस शरीर की सार्थकता है आप जैसे भक्त की सेवा करने में, और जिह्वा फलम त्वादिश कीर्तनम ही, इस जिह्वा की सार्थकता है आप जैसे भक्त के गुणगान करने में, क्योंकि सुदुर्लभा भगवता ही लोके, इस लोक में आप जैसा भक्त होना बहुत दुर्लभ है, कठिन है। इसलिए तो कही कहे प्रभु सुनो सनातन, कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। हे सनातन सुनो, कृष्ण बड़े दयालु हैं, महारौरो हैते तुम्हार करिला उद्धार, कृपा समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। महारौरो से नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर पद रौरव है, पद पोजीशन कहते हैं, कृपा र समुद्र कृष्ण गंभीर अपार, एक गंभीर समुद्र की तरह है, बहुत बड़ा कृपा है, महाप्रभु कह रहे हैं कि आपका उद्धार हुआ कृष्ण के कृपा से। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी, मैं कृष्ण कृपा को कुछ नहीं समझता, मैं कृष्ण को नहीं इसका श्रेय दे रहा हूं, ये तो आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। के मने छुटीला प्रभु बलि प्रभु प्रश्न कैला, कैसे सनातन कारागृह से निकले, महाप्रभु पूछ रहे हैं, नवाब हुसैन शाह के बंधन से कैसे पार हुए, आद्यो पांत सब कथा तेहो सुनाईला, कैसे कैसे जेलर को मनाया, कैसे उसको पैसा दिया, रिश्वत दिया, कैसे निकला, सारी कथा सुनाए। प्रभु कहे तुम्हार दुई भाई प्रयाग में मिलीला, आपका दो भाई रूप और अनुपम प्रयाग में मिले, रूप अनुपम तुम्हें वृंदावन गेला, वे लोग वृंदावन गए, और तपन मिश्र जी को और चंद्रशेखर को बुलाए महाप्रभु, मिला बुलाकर उनसे परिचय कराए। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण, कहे प्रभु प्रसाद पाया जाए, इनको प्रसाद पवाए। प्रभु कहे नहीं, छोर करा जा सनातन, अभी तो उपवास है, कोई बात नहीं, सेविंग कराओ, वैष्णव बन जाओ, जाओ छोर करा कराओ। चंद्रशेखर प्रभु कहे बुलाइया, यही बेश दूर करो, जहाँ इहार लैया ले जाओ चंद्रशेखर, इसका सेविंग करा करके गंगा स्नान करके भद्र कराइया, तारे गंगा स्नान कराई ल, शेखर आनिया तारे नूतन वस्त्र दिल। तब चंद्रशेखर जी नया वस्त्र दिए कपड़ा, वो दरवेश जो लुंगी उंगी पहने होंगे मुसलमानी, सबको उतरवा कर कहे ए धोती पहनिए, सही वस्त्र सनातन ना कोई अंगीकार, कहे नहीं नहीं नया वस्त्र नहीं पहनेंगे। अच्छा नहीं उसको स्वीकार किए। सुनिया प्रभु र मने आनंद अपार। महाप्रभु जब सुने कि वो वस्त्र नहीं पहने और सनातन उन्हीं चंद्रशेखर का उच्छिष्ट पुराना वस्त्र पहन करके आए, एक धोती को दो टुकड़ा करके एक पहन लिए और एक उतरिए, उसी में कौपिन बना लिए, बस हो गया विरक्त वेश। मध्यान्ह करिया प्रभु गेला भिक्षा करिवारे, सनातन लैया गेला तपन मिश्र। तो तपन मिश्र के घर ले गए। महाप्रभु रहते थे चंद्रशेखर के यहाँ, चंद्रशेखर जी भी कायस्थ थे, तो चंद्रशेखर जी के यहाँ रहते थे और प्रसाद लेते थे तपन मिश्र के यहाँ। तो वहां पाद प्रक्षालन करके जब भिक्षा के लिए बैठे तो सनातन को भी भिक्षा करने के लिए कहते। मिश्र कहे सनातन किछु कृत आछे, अभी नहीं करेंगे, कुछ कृत बाकी है, आप प्रसाद कीजिए। तो सनातन जब महाप्रभु प्रसाद पा लिए उसके बाद पाए, इसके बाद मिश्र कहे कि आप वस्त्र पहन लीजिए नया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं वस्त्र नाना मोरे वस्त्र दीते यदि तुम्हार है मन, तो निज परिधान एक देह पुरातन। तो मिश्र जी से कहे कि आपको देने का मन है तो आप अपना पहना हुआ वस्त्र दे दीजिए। तबे मिश्र पुरातन एक धोती दिल, तेहो दुई बहिर्वास कौपिन करील, उसी को फाड़ कर बहिर्वास बना लिए, कौपिन बना लिए, सब कुछ। तो एक दिन की घटना है, महाराष्ट्री द्विजय प्रभु मिलाईला सनातन से विप्र तारे कैल महानिमंत्रण। तो महाराष्ट्री ब्राह्मण आते थे महाप्रभु से मिलने, तो मिल करके बड़ा प्रसन्न हुए और कहे कि सनातन जब तक आप काशी में हैं तब तक आप हमारे घर भिक्षा लीजिए। सनातन तुम्ही जावत काशी ते रहिबा, तावत हमार घरे भिक्षा जे करीबा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सनातन कहे आमी मधु करी करीबो, हम एक जगह नहीं करेंगे, ब्राह्मणे घरे केन एकत्र भिक्षा लोग, क्यों ब्राह्मण के घर में एक जगह भिक्षा लूंगा। तो सनातन वैराग्य प्रभु आनंद अपार, सनातन की बात सुनकर महाप्रभु बहुत खुश होते थे, लेकिन भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार, लेकिन वो कीमती कंबल अभी जो बहनोई श्रीकांत के द्वारा मिला था अभी सनातन के कंधे पर था। सनातन जानी ला ये प्रभु रे न भाई, बड़ा ध्यान से देखते थे, कुछ बोलते थे नहीं महाप्रभु, लेकिन ध्यान से कंबल की तरफ देखते थे। तो भोट त्याग करी बारे चिंतिला उपाय, सनातन सोच गए कि अब तो इसको त्यागना ही पड़ेगा। तो गंगा के तट पर गए मध्यान्ह करने के लिए दोपहर। तो एक गौड़िया बंगाली कांथा गुदड़ी धो करके सुखा रहा था। तो तारे कहे ओरे भाई करो उपकारे, यही भोट लैया यही कांथा दे हमोरे, ये जो सुखा रहे हो कांथा मुझको दे दो और ये भोट कंबल ले लो। तो सही कहे रहस्य करो प्रमाणी कहिया, क्या कारण है ऐसा दे रहे हो, रहस्य तो बताओ, बहुमूल्य भोट दीबा किने कंथा लैया, इतना कीमती भोट कंबल देकर एक गुदड़ी क्यों लेना चाहते हो, बताओ तो सही, कुछ रहस्य है। ते वो कहे रहस्य नहीं कही सत्यवाणी, कोई ऐसी बात नहीं है, बात क्या है कहीं से चुरा उरा कर तो नहीं लाए हो ना और मुझको देकर फंसा दोगे, कुछ तो रहस्य है, कुछ तो बताओ, कहीं से किसी का लेकर आया मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, आप इसको लीजिए, मैं सन्यासी बैरागी व्यक्ति, मैं वृंदावन रहूंगा, इतना महंगा कंबल लेकर कहां मधुकरी करूंगा। सनातन गोस्वामी के लिए उतना कीमती कंबल लेकर मधुकरी करना मुश्किल है, लेकिन आज युग बदला, मधुकरी करने वाले कहते हैं राधे रोटी अभी नहीं बना है बाबा, अच्छा बनने पर फोन कर देना, इसलिए रोटी तैयार होने पर फोन कर लेना है। मधुकरी करने वाले बाबा जी लोगों के पास फोन है, युग बदला समय बदला, तो बाबा जी आप घर आ जाइए, तो नहीं यहीं पहुंचा दो, पहुंचा भी देते हैं। कभी कभी मधुकरी करने गए, एक बार अब छोड़िए नहीं कहें एक बार वृंदावन में, इस समय तो राधा कुंड में रहते हैं, क्या नाम है उनका भूल रहा हूँ, अपना ही गुरु भाई है जो केशव कुंज में प्रायः बैठते रहते थे हाफ पहन कर, क्या नाम है उनका, दिल्ली के कोई पंजाबी, देखिए भूल रहा हूँ नाम, जो भी हो। अब उन एक बार पता चला कि वो कार, उनको उनका भाई उनको कार खरीद कर दे दिया, तो वहीं केशव कुंज में कार आता था, तो कहते थे कहाँ कहाँ आप जाते हैं, कार का प्रयोग क्या करते हैं, तो कभी कभी जाता हूँ राधा कुंड वृंदावन वहाँ बरसाना, कभी मधुकरी करने महाराज कहे कार से मधुकरी करने जाते हैं तो अब यही है, तो क्या करूँ, मधुकरी के लिए कभी कभी जाता हूँ कार में, महाराज कहे हद हो गया और फिर भी ब्रजवासी लोग रोटी दे देते हैं, तो हाँ वो तो जानते हैं बाबा जी हैं, कहें कि एक काम करो अपने भाई को कार लौटा दो, क्या जरूरत है, बहुत डांटे महाराज, और कहे कि कार दे दो और चुपचाप जाकर राधा कुंड में भजन करो, क्या नाम है, मैं नाम कैसे भूल रहा हूँ, दिव्य पुरुष, अरे हाँ दिव्य पुरुष, हाँ दिव्य पुरुष नाम है, अब याद आ गया, तो वो दिव्य पुरुष राधा कुंड में इस समय रहते हैं, कार लौटा दिए भाई को, महाराज कहे कि क्यों कार स्वीकार कर लिया, मैंने कभी कभी जाना होता था इधर उधर, कहे नहीं दे दो, और वहाँ जाकर राधा कुंड में अब बाबा जी रूप में भजन करते हैं। तो इस तरह से आजकल अब उनको कंबल एक समस्या बना हुआ था, प्रभु प्रभु कहे तो तबे बलि कांथा लैला भोट तार दिया, समझ गया वो बंगाली, गोसाई ये ठाई आईला कंथा गले दिया, कंथा गले कंधे पर रहकर आए, बदल करके बंगाली को देखकर प्रभु कहे तुम्हार वोट कंबल को था गेला महाप्रभु पूछ दिए कहाँ गया, तो प्रभु पद सब कथा गोसाई कहिला, प्रभु कहे इहा अमी करिया छे विचार, कि विषय रोग खंडाइला कृष्ण जे तुम्हार, आ से केने राखीब तुम्हार शेष विषय भोग, रोग खंडित सद वैद ना राखे शेष रोग। तो मैं यही सोच रहा था कि कृष्ण की कैसी कृपा है कि अब भी भोट कंबल में तुम्हारी आ सकती है, कोई भी सदवैद्य तब तक इलाज करता है जब तक थोड़ा सा भी रोग रहता तो छोड़ता नहीं है, वो रोग को पूरा खंडित करके ही छोड़ता है, शेष रोग नहीं छोड़ता। तो तीन मुदार भोट गाय मधु करी ग्रास, धर्म हानि है लोके करे उपहास, इतना महंगा कंबल लेकर अगर मधुकरी करोगे तो लोक में हंसी होगी। तो महाराज भी इन्हीं सब कथाओं को सुनाए दिव्य पुरुष को, तो कहे कि ठीक नहीं है, गोसाई कहे जे खंडीला कु विषय भोग, तार इच्छा गेला मोर शेष विषय रोग। बहुत अच्छा हुआ, सनातन गोस्वामी कहे कि भगवान ने मुझे संसार के पापमय जीवन से बचा लिया, उनकी इच्छा के अनुसार भौतिक आकर्षण का अंतिम चिन्ह भी आज कंबल भी चला गया, प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा कैल, तारे कृपा प्रश्न करते तार शक्ति है ल, महाप्रभु के कृपा से उनके अंदर प्रश्न करने की क्षमता हुई। और पूर्वे जैसे राय पासे, देखिए दोनों के लिए कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, रूप गोस्वामी के लिए भी कहे, इनके इनके लिए भी कह रहे हैं, पूर्वे जैसे राय पासे प्रभु प्रश्न कैल, आ तार सकते रामानंद तार उत्तर दिला, इहार प्रभु सकते प्रश्न करे सनातन, अपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु उत्तर दिए हैं, इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रयम तत्त्वम सनातना ये सह कृपयो परिदेश सह। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण का असली पहचान बताए, भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य भक्ति रस के विषय सब कुछ महाप्रभु ने सारे तत्व अपने अहेतुकी कृपा व सनातन गोस्वामी को बतलाई। रूप गोस्वामी को केवल 10 दिन शिक्षा दिए, सनातन गोस्वामी को 2 महीना, महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी को जो दी गई है उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी 1 अध्याय में रखते हैं, बस इसी 19 परिच्छेद में पूरा कर दिए। और सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी गई वो 5 अध्याय में है, यहाँ 20 से लेकर 24 तक, तो विस्तार से उसको सनातन शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ से शिक्षा प्रारंभ होता है। तबे महाप्रभु तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया दैन्य विनती करे दंत तीर्ण लैया। विनय भाव से महाप्रभु का चरण पकड़े, प्रश्न करना चालू किए। नीच जाति नीच संगी पतित अधम कु विषय कुपे पड़ी ग्वाइनु जन्म, अपनार हिताहित किछुई ना जानी ग्राम व्यवहारे पंडित ताहि सत्यमानी, कृपा करी यदि मोरे करिया छे उधार अपने कृपाते कहो कर्तव्य अमार, के आमी केने अमार जारे तापत्र इहा नहीं जानी के मने हित है। ये सब प्रश्न है। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। तब महाप्रभु उत्तर देते हैं कि आप ऐसे मत कहिए, आप योग्य पात्र हैं। साधु का स्वभाव होता है अपने ज्ञान की दृढ़ता के लिए जिज्ञासा करता है, कन्फर्मेशन के लिए, मैं जो जानता हूँ वो ठीक जानता हूँ कि नहीं, कोई प्रमाणिक स्रोत मिल गया ऑथराइज्ड वक्ता, तो जानते हुए भी प्रश्न कर लेता है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है कि कुछ गड़बड़ है। इसके लिए तो आप सर्व ज्ञाता हैं, कोई बात नहीं, साधु का स्वभाव है, जानते हैं, जानबूझ कर पूछते हैं। तब महाप्रभु उपदेश करना प्रारंभ किए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने अनेकों ग्रंथ लिखा है, और केवल गौड़ीय संप्रदाय के लिए नहीं संपूर्ण वैष्णव समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। एक बार बरसाना के रमेश बाबा अपने प्रवचन में बोलते बोलते बोल दिए, भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ श्लोकों की व्याख्या कर रहे थे, कहे कि अगर इस मंच से मैं सत्य रूप में कहूं तो संकीर्णता से हटकर अगर एकदम उत्कृष्ट भाव में, उदार भाव में कहा जाए तो ये नितांत सत्य है। डंके के चोट पर मैं कह सकता हूँ कि यदि श्रीपाद रूप गोस्वामी कृपा पूर्वक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना नहीं किए होते तो संपूर्ण वैष्णव समाज भक्ति के परिभाषा से अनभिज्ञ ही रह गए होते। वैष्णव को भक्ति की जो उत्कृष्ट परिभाषा रूप गोस्वामी ने दिया, इसके पूर्व चाहे रामानुजाचार्य हों या माध्वाचार्य, बल्भाचार्य, निम्बार्काचार्य, जितने वैष्णव आचार्य हैं वह परिभाषा किसी ने नहीं दे पाया जो रूप गोस्वामी ने दिया है। यह है महाप्रभु की विशेष कृपा। और एक गौड़ीय आचार्यों ने भक्ति की दृष्टि खोल दी। भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, कृष्ण संबंध किसको कहते हैं, इतना उज्ज्वल भाव में उन्होंने लिखा है कि संकीर्णता से हटकर उदार भाव से कहा जाए तो यह औपमेय ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। इसकी किसी से तुलना नहीं है। बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किए। तो उस समय हम लोग आपस में विचार कर रहे थे कि बाबा चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े हैं क्या। तो हमारे साथ श्याम सुंदर जी थे, बातचीत होने लगा। श्याम सुंदर कहे कि वास्तव में बाबा अगर जान जाते तो बहुत अच्छा होता। तो उनको बतलाए चैतन्य चरितामृत के विषय में। कहे कि हमको तो बंगला पता नहीं है, लेकिन आप कृपा करके पढ़ाओ तो हम पढ़ लेंगे, रुक जाओ यहीं समझाओ। तो कहे बाबा हिंदी में भी मिलता है, बंगला में ही नहीं है। तो उसको मंगा कर कुछ दिन 15-20 दिन तो रोज रोज सुनाते थे 1-1 घंटा, फिर बाद में बाबा पढ़ लिए। तो पढ़ने के बाद कहे कि वास्तव में अद्भुत ग्रंथ है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, जो भक्ति की परिभाषा जिस रूप में दिए हैं वो अद्भुत है। गौड़ीय आचार्यों का जो धरोहर है वो समस्त वैष्णव के लिए अद्भुत देन है, अद्भुत दान है। उसकी कोई उपमा नहीं, कोई तुलना नहीं। तो इस तरह से महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया और कृपा पूर्वक सभी जीवों के लिए दिया, उसको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मुख्य रूप से जीव गोस्वामी अधिक विस्तार से इसको लिखा। तो इन शिक्षाओं को भी पढ़ना चाहिए। तो अभी तक हम लोग महाप्रभु के साथ रूप सनातन के दो मीटिंग की कथा सुन चुके, आज दूसरा मीटिंग भी पूरा हुआ। कल और परसों दो दिन पूरी में महाप्रभु के साथ रूप सनातन के मिलन कथा पढ़ेंगे। तो दोनों को अलग अलग टाइम में एक एक प्रसंग कल परसों में, रूप गोस्वामी का, इसके बाद सनातन गोस्वामी का। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।